एट एच एच एस अध्याय 2 V11। पहले अध्याय में मैंने खुद को समझने की कोशिश की। मेरा जीवन एक जंगली एब्सर्डिस्तान जैसा प्रतीत हुआ, विरोधावासों और टूटनों से भरी एक दुनिया जिसे मैं अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों से व्यवस्थित करने की कोशिश करता रहा। अध्याय के अंत में एक बार ग्राफ ने मेरी प्राथमिकताएं दिखाई। मेरे लिए परिवार और दोस्त सबसे ऊपर हैं, उसके बाद चीजों को विकसित करने की इच्छा, लक्ष्यों को प्राप्त करने की चाह और बोरियत से बचने की प्रवृत्ति। ये मेरे जीवन की सांख्यिकी अगले कदम की ओर दृष्टि खोलती है। अब बात केवल बाहरी लक्ष्यों की नहीं है, बल्कि मेरे सोचने की संरचनाओं की है, उस तरीके की जिसमें ध्यान, अतिस्क्रियता, संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता मेरे भीतर एक साथ काम करते हैं। ठीक इसी संबंध को मैं आगे वर्णित करना चाहता हूँ। प्रारंभिक उच्च प्रतिभा और न्यूरो डायवर्सिटी। कई लोग उच्च प्रतिभाशाली बच्चों की कल्पना छोटे चमत्कारी प्राणियों के रूप में करते हैं, जो सब कुछ तुरंत समझ जाते हैं और हर जगह चमकते हैं। मेरे मामले में ये सच था। मैंने दूसरी कक्षा छोड़ दी और सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ में शामिल था। उच्च प्रतिभाशाली बच्चों के परीक्षणों में मैं रचनात्मकता, एकाग्रता, स्मृति और संख्याओं की श्रृंखला के क्षेत्रों में भी उच्चतम प्रतिभाशालियों में औसत से ऊपर था। गणित और प्राचीन ग्रीक मेरे मुख्य विषय थे, जिनमें मैंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, और अबिट्योर में मुझे लैटिन, ग्रीक, रसायन और जर्मन में पुरस्कार मिले। इन तथ्यों के बारे में बात करना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि उच्च बुद्धिमत्ता अक्सर अस्वीकृति, ईर्ष्या या द्वेष को जन्म देती है। मेरे लिए ये बताना महत्वपूर्ण है कि आईक्यू किसी व्यक्ति के मूल्य के बारे में कुछ नहीं कहता। मेरी न्यूरोडायवर्सिटी दो भागों से बनी है, अत्यधिक प्रतिभा और ADHD। मैं उत्तेजनाओं को तेज, अधिक जुड़ा हुआ, आवेगपूर्ण और तीव्रता से संसाधित करता हूँ। ये मिश्रण मेरी धारणा, दुनिया की संरचना और मेरी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। मुझे आंतरिक रूप से शांत होने के लिए अत्यधिक बौद्धिक इनपुट की आवश्यकता होती है। यदि ये नहीं मिलता तो आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है, जैसे मेरा दिमाग एक साथ कई फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा हो। मेरे लिए तार्किक संगति केंद्रीय है। जैसे ही कुछ मेल नहीं खाता, मुझे उसे स्पष्ट करना होता है, भले ही अन्य लोग इसे बारीकी से गिनती माने। बिना अर्थ की परंपराओं पर मैं इसलिए सवाल नहीं उठाता कि मैं उकसाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरी सोच पैटर्न खोजती है। साथ ही मैं अति संवेदनशील हूँ, आवाजें तेज लगती हैं, रंग अधिक तीव्र, भावनाएं गहरी, और ADHD इस संवेदनशीलता को और बढ़ा देता है। उत्तेजना की अधिकता मेरे लिए कोई सैद्धांतिक खतरा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की चुनौती है। जैसी सोच की ओर ले जाते हैं, एक चिंगारी काफी है, और मैं वे संबंध देखता हूँ जो दूसरों से छिपे रहते हैं। गणित के सवाल या जटिल समस्याएं मुझे तुरंत आकर्षित करती हैं। परिणाम मेरे दिमाग में पहले से होता है, इससे पहले कि मैं हल करने का तरीका सचेत रूप से सोचूं। ADHD इन अचानक आने वाले विचारों को और बढ़ा देता है। इन्हें ना तो योजनाबद्ध किया जा सकता है, ना ही वश में किया जा सकता है, बल्कि ये रोजमर्रा में अचानक आ जाते हैं। अक्सर विचार मेरे मन की आंखों के सामने तैयार चित्रों के रूप में आते हैं, ग्राफिक संरचनाएं, अवधारणाएं, यूजर इंटरफेस। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग पृष्ठभूमि में लगातार गणना कर रहा हो और फिर परिणाम मेरे सामने रख देता हो। ऐसे विचार उपहार भी हैं और हमला भी। यह नेटवर्क जैसी सोच आकर्षक और थकाऊ दोनों है। एक विचार दूसरे को खींचता है, हर विचार नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। ADHD के साथ यह न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि थका देने वाला भी, क्योंकि मन शायद ही कभी शांत होता है, और मैं उन विवरणों में उलझ जाता हूँ जो दूसरों को दिखते भी नहीं। एक छोटी सी तार्किक कमी मेरे भीतर तीव्र असुविधा पैदा करती है। मेरा पूर्णता का आग्रह मुझे कई बार आगे बढ़ाने के बजाय जकड़ लेता है। यह सबसे तीव्र तब होता है जब कोई नया विचार केवल सोच के रूप में नहीं, बल्कि पूरे चित्र के रूप में चमकता है, रंगों और आकारों के साथ। यह चित्र अक्सर मामूली परिस्थितियों में प्रकट होते हैं, टहलते समय, बच्चों के साथ खेलते समय, या रात में जब मेरा ADHD मेरा दिमाग लगातार सक्रिय रखता है। ऐसे चित्र आने से पहले दिमाग में अनगिनत टुकड़े घूमते रहते हैं, एक थकाऊ लेकिन आनंददायक अराजकता। मेरी उच्च बुद्धिमत्ता केवल दिमाग तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे शरीर में व्याप्त है। मैं तनाव, एलर्जी और अन्य प्रभावों पर अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करता हूँ। मेरा शरीर अक्सर एक तरह की स्थायी तनावावस्था में रहता है, जैसे वह हमेशा सतर्क हो। लिए गए विराम भी मेरे लिए आरामदायक नहीं होते अगर मुझे मानसिक चुनौती नहीं मिलती। इसी कारण मैं उच्च गुणवत्ता वाली, कम उत्तेजना वाली चीजों की ओर आकर्षित होता हूँ। सरल स्वाद का मतलब मेरे लिए है कुछ बेहतरीन उपकरण, स्पष्ट पाठ और साफ मॉडल चुनना। गुणवत्ता मेरे तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, औसतपन शोर पैदा करता है, रूढ़ियों के बजाय व्यक्तित्व। हालांकि मैं यहाँ खुद को खुलकर वर्णित कर रहा हूँ, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उच्च और अत्यधिक प्रतिभाशाली लोग बहुत अलग अलग पैटर्न रखते हैं। सभी मेरी तरह उत्तेजनाओं को संसाधित नहीं करते। उच्च अपनी प्रतिभा को विश्लेषणात्मक, उच्च कलात्मक, शारीरिक या सामाजिक रूप में अनुभव करते हैं। मेरा ADHD मेरी व्यक्तिगतता को और बढ़ाता है, क्योंकि यह मुझे विविध उत्तेजनाओं से निपटने के लिए अपने रास्ते खोजने को मजबूर करता है। जो एक के लिए समृद्धिदायक है, वह दूसरे के लिए पंगु बना सकता है। इसलिए मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपना व्यक्तिगत प्रोफाइल विकसित कर सके बिना किसी मानक में ढाले जाने के। यह व्यक्तिगतता एक साथ अभिशाप और वरदान है। यह खुद को वर्गीकृत करना कठिन बनाती है, लेकिन अपने रास्ते खोजने की स्वतंत्रता भी देती है। परिवार और मूल्य मेरे अपने परिवार में विविधता इन भिन्नताओं को स्पष्ट करती है। मेरे एक बच्चे में उच्च प्रतिभा है, दूसरे में औसत। दोनों दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते हैं और मेरे अपने ADHD के कारण मुझे संतुलन बनाए रखने की अतिरिक्त चुनौती है। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम एक परिवार के रूप में मूल्य जिए। हर कोई अलग है, हर किसी की अपनी ताकत है, कोई भी कम या ज्यादा मूल्यवान नहीं है। यह दृष्टिकोण हमें भिन्नताओं को प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं बल्कि समृद्धि के रूप में देखने में मदद करता है, भले ही यह रोजमर्रा में हमेशा आसान नहीं होता। मुझे पता है कि कुछ परिवारों में ऐसी भिन्नताएं टूटनों का कारण बनती हैं। जब किसी बच्चे को बहुत तेज या बहुत थकाऊ माना जाता है, चाहे वह उच्च बुद्धिमत्ता या ADHD के कारण हो, तो तनाव उत्पन्न होता है। भाई बहन उपेक्षित महसूस करते हैं, माता पिता अभिभूत हो जाते हैं। मेरे परिवेश में यह हमेशा एक संतुलन साधने जैसा था, इन भिन्नताओं को छुपाने के बजाय खुलकर चर्चा करना, ताकि ईर्ष्या, गलतफहमियां या चोटें रिश्तों को नष्ट न करें। केवल इसी तरह हम यह रोक सकते हैं कि भिन्नता दीवारें खड़ी न कर दे। मैं यह रास्ता प्यार के कारण चलता हूँ, भले ही यह थकाऊ हो। सामाजिक संपर्क की चुनौती। मेरी नेटवर्क जैसी सोच दूसरों के लिए अक्सर चुनौती होती है। मुझे महसूस होता है कि मेरी बोलने की गति सामने वाले के लिए असहज रूप से तेज है। मैं बहुत कम समय में कई जानकारियां और संबंध निकाल देता हूँ। मेरे लिए यह तर्कसंगत है, दूसरों के लिए यह अराजक और भारी लगता है। एक छोटी सी तार्किक कमी मुझे तुरंत उसे सुलझाने के लिए मजबूर करती है, जिससे मैं आवेगपूर्ण व्यवहार करता हूँ। यही आवेगशीलता कारण है कि मेरे साथ बातचीत कभी कभी विचारों की छलांग जैसी लगती है। मुझे पता है कि मेरी सोचने की शैली दूसरों के लिए डरावनी हो सकती है। जब मैं किसी तार्किक खामी की ओर इशारा करता हूँ या आदतों पर सवाल उठाता हूँ, तो लोग अपनी सुरक्षा में खतरा महसूस करते हैं। यह अक्सर आवेग में होता है, क्योंकि मैं आंतरिक रूप से असंगतता को सहन नहीं कर सकता। रिश्तों में इससे टकराव और गलतफहमियां हुई हैं। कुछ लोग दूरी बना लेते हैं। यह दुखद है जब दूसरे मेरी ताकत को संसाधन के रूप में नहीं बल्कि खतरे के रूप में देखते हैं और चुपचाप खुश होते हैं जब मुझे कुछ नहीं मिलता। ईर्ष्या एक मानवीय भावना है, लगभग एक विकासवादी सुरक्षा कार्यक्रम। अपनी अति संवेदनशीलता के कारण मैं ऐसी तरंगों को तुरंत महसूस करता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी पर हावी होना नहीं है, मेरी प्रेरणा जिज्ञासा और अर्थ की तलाश है, श्रेष्ठता नहीं। ये अनुभव लगातार प्रामाणिकता और अनुकूलन के बीच संतुलन साधने की ओर ले जाते हैं। या तो मैं खुद को ढालता हूँ, कम बोलता हूँ और अपनी सोच की जटिलता को छांटता हूँ, तब मैं सामाजिक रूप से एकीकृत होता हूँ लेकिन आंतरिक रूप से अधूरा महसूस करता हूँ, या मैं जैसा हूँ वैसा दिखाता हूँ, सीधा, आलोचनात्मक, कभी कभी असुविधाजनक, और जोखिम रहता है कि लोग दूर हो जाएं। मुझे हमेशा सोचना पड़ता है कि क्या कोई टिप्पणी सहायक है या आक्रमण के रूप में ली जाएगी। ये रोजमर्रा की जद्दोजहद मेरे सबसे बड़े आंतरिक संघर्षों में से एक है। सामाजिक वर्जनाएं और बुद्धिमत्ता के साथ व्यवहार। जर्मनी में हम बुद्धिमत्ता के विषय को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहते हैं। लोग उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में शर्मिंदा महसूस करते हैं और एलीट शब्द तुरंत नकारात्मक अर्थ ले लेता है। इसके ऐतिहासिक कारण हैं, नाजी काल में बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का दुरुपयोग कर लोगों को अलग थलग और नष्ट किया गया। घमंड के डर से इस विषय को अक्सर वर्जित कर दिया जाता है। बजाय इसके कि उस पर भिन्नता से चर्चा की जाए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो असंगतियों को तुरंत देखता है और उन्हें छोड़ना मुश्किल पाता है, यह तनाव सहना कठिन है। मैं चाहता हूँ कि हम भिन्नताओं के बारे में खुलकर बात कर सकें बिना तुरंत मूल्यांकन किए। मुझे विश्वास है कि समाज को लाभ होगा अगर मेरे जैसे लोगों को लगातार नहीं रोका जाए। मेरी अति बुद्धिमत्ता मुझे जल्दी नए समाधान देखने देती है, जबकि मेरा ADHD मुझे जिज्ञासु और अपरंपरागत सोचने देता है, लेकिन अक्सर इसे बहुत तेज, बहुत आलोचनात्मक, बहुत अधिक के रूप में देखा जाता है। सबसे अधिक चोट पहुंचती है जब दूसरे मेरी गलतियों पर खुश होते हैं या मेरी सफलताओं को छोटा करते हैं। मेरी दृष्टि में अगर हम इन क्षमताओं को अवसर के रूप में उपयोग करें तो यह लाभकारी होगा। पेशेवर रास्ते और बेचैनी। कई अत्यधिक प्रतिभाशाली लोग पेशेवर रूप से स्वतंत्र होते हैं। मैंने भी जल्दी महसूस किया कि एक ही पेशा मुझे लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रखेगा। मेरी अति बुद्धिमत्ता लगातार नई चुनौतियां खोजती है और मेरा ADHD विविधता की मांग करता है। इसलिए मैंने कई गतिविधियां समानांतर विकसित की, परियोजनाएं शुरू की, कंपनियां बनाई और हमेशा नई नई योजनाएं अपनाई। कुछ के लिए यह बेचैन महत्वाकांक्षा जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक आंतरिक आवश्यकता है, लगातार आगे बढ़ने और अपनी ऊर्जा को ऐसी चीजों में लगाने की जो मुझे सच में चुनौती दे। बौद्धिक रूप से समृद्ध वातावरण में मैं खिल उठता हूँ, वहां जहां रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक सोच और लगातार सवाल करना बाधा नहीं बल्कि समृद्धि माने जाते हैं। पारंपरिक कंपनियों में मुझे जल्दी महसूस होता है कि अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल है। मेरी सोच अपरंपरागत है, मेरे विचार सामान्य सीमाओं को पार करते हैं और ADHD के कारण मैं उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के प्रस्तुत कर देता हूँ। मेरे लिए यह स्वाभाविक है, दूसरों के लिए थकाऊ या डरावना। मुझे हमेशा पूछना पड़ता है क्या मेरी आपत्ति सहायक है या आक्रमण जैसी लगती है। यह संतुलन मुझे यह समझाता है कि मेरी सोच मूल्यवान हो सकती है लेकिन टीम में बने रहने के लिए संवेदनशीलता जरूरी है। हर अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति नेतृत्व के लिए उपयुक्त नहीं होता। मैंने खुद लंबे समय तक दूसरों का नेतृत्व करने की इच्छा नहीं की। नेतृत्व का अर्थ है विषय वस्तु पर कम काम करना और दूसरों की जिम्मेदारी लेना। मेरी अति बुद्धिमत्ता मुझे विषय की गहराई, विश्लेषण और निर्माण की ओर खींचती है। ADHD के साथ मुझे प्रबंधन कार्यों पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना कठिन लगता है। मेरा दिमाग जल्दी कूदता है, निर्णय लेना कठिन होता है क्योंकि मैं लगातार नई संभावनाएं देखता हूँ। साथ ही मुझे पता है कि नेतृत्व दृष्टि को लागू करने का अवसर देता है लेकिन दूसरों के लिए बहुत जिम्मेदारी भी लाता है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह विशेष रूप से बड़ी चुनौती है। पेशेवर असफलता अत्यधिक प्रतिभाशालियों में असामान्य नहीं है। कुछ शीर्ष पदों तक पहुंचते हैं या सफल कंपनियां बनाते हैं जबकि अन्य उत्तेजना की अधिकता या आंतरिक बेचैनी से टूट जाते हैं। मैं दोनों पक्ष जानता हूं। ऐसे दौर जब मेरा ADHD मुझे इतना सक्रिय कर देता है कि मैं मुश्किल से सोता हूं और गति यातना बन जाती है, एक आंतरिक जलन जो दिमाग में नर्क जैसी लगती है, तब मुझे पीछे हटना पड़ता है खुद को फिर से पाने के लिए। पढ़ना, सोचना, रचनात्मक होना, यह आगे बढ़ने और पीछे हटने के बीच का उतार चढ़ाव मेरे जीवन का हिस्सा है। बाहरी लोगों को यह बेचैन प्रदर्शन की तरह लगता है लेकिन मेरे लिए यह शांत होने का तरीका है। मेरा दिमाग लगातार विचार पैदा करता है, जब तक मैं उन्हें ठोस रूप नहीं देता तब तक कुछ भी शांत नहीं होता। ADHD यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रवाह कभी न रुके, इसीलिए मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें कई पहलू शामिल हैं। एकरसता मुझे घुटन देती है, कोपिंग रणनीतियां और सीखने के क्षेत्र। अधूरी और अधिकता के बीच के अंतर को संतुलित करने के लिए मैंने अपनी रणनीतियां बनाई हैं। उदाहरण के लिए जब मैं अंग्रेजी सीख रहा था, जर्मन, लैटिन और प्राचीन ग्रीक के अलावा एकमात्र भाषा जिसमें मेरी रुचि थी, तो मैं जो कुछ भी सुनता उसे दिमाग में तुरंत अनुवाद करता। इससे जटिलता बढ़ती, मैं विषय पर बना रहता पर मेरे विचार भटकते नहीं। व्याख्यान या चैट ऑडियो में अक्सर दोगुनी गति से सुनता हूँ, तब मेरा दिमाग सुखद रूप से व्यस्त रहता है और मेरा ADHD मुझे प्रवाह में होने का एहसास देता है। अपनी खाली समय में मैं जानबूझकर ऐसी गतिविधियां खोजता हूँ जो मुझे मानसिक रूप से चुनौती दे। प्रोग्रामिंग, विशेषज्ञ साहित्य, अन्य नर्ड्स के साथ संवाद और अब तो AI विकास भी। यह एक तरह की आत्म देखभाल है, एक वेंटिल जिससे स्थायी आंतरिक बेचैनी को रचनात्मक दिशा मिलती है। मेरे लिए सीखने का अवसर महत्वपूर्ण है, न कि केवल अधिक सामग्री मिलना। मुझे ऐसी चुनौतियां चाहिए जो जटिल हों और मेरे वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर हो। अगर कार्य बहुत आसान है तो मुझे न केवल बोरियत होती है बल्कि वास्तविक तनाव महसूस होता है, कभी कभी शारीरिक लक्षण भी। ADHD के कारण मैं इस दबाव को और तीव्रता से महसूस करता हूँ। मेरी ऊर्जा व्यर्थ जाती है और मेरे ही खिलाफ हो जाती है। मात्रात्मकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अपनी रणनीतियाँ विकसित करना कि मैं अधिकता से कैसे निपटता हूँ। ठीक यही क्षमताएं, निराशा सहन करना, गलतियों को झेलना, आवेगों को रोकना, मैं स्कूल और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में चाहता। बेचैन सृजनशीलता और पीछे हटना मेरी बेचैन सृजनशीलता की अपनी छायाएं भी है। मैं अक्सर रात में जागता रहता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग कोई नया विषय तब तक चबाता रहता है जब तक उसकी हर शाखा स्पष्ट ना हो जाए। किताबें, नोट्स और ढीले पन्ने जमा हो जाते हैं जब मेरा ADHD और अति बुद्धिमत्ता फिर से कोई नई शोध यात्रा शुरू कर देते हैं। तब मैं जैसे रिमोट से संचालित होता हूँ, विचार बिना रुके आते हैं और जब तक आंतरिक पजल पूरा नहीं होता तब तक दबाव नहीं घटता। यह प्रेरक उत्तेजना और अनिवार्य थकान के बीच लगातार संतुलन साधना है। जब मैं इस प्रवाह से खुद को अलग नहीं कर पाता, ऐसा होने पर भी समाज के लिए यह लाभकारी होगा। अगर हमें लगातार ब्रेक नहीं लगाना पड़े, बहुत संभावनाएं बेकार रह जाती हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोग खुद को ढालते हैं, छुपाते हैं या जानबूझकर गलतियां करते हैं ताकि बहुत बुद्धिमान या बहुत अलग न दिखें। मुझे वे दौर याद हैं जब मैंने अपनी क्षमताओं को छोटा करके दिखाया ताकि टकराव न हो। इस व्यवहार ने मेरी असुरक्षा और आत्मसंदेह को और बढ़ा दिया। क्या वे मुझे पसंद करते हैं या केवल उस भूमिका को जो मैं निभाता हूं? जैसे सवालों का जवाब देना मुश्किल है, यह अनुकूलन और खुद को खुलकर दिखाने की इच्छा के बीच झूलना मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मैंने अपना रास्ता इस तरह पाया कि मैंने एक व्यापक क्षेत्र चुना, सांख्यिकी। वहां मैं गहराई में जा सकता हूं और साथ ही बार बार नए क्षेत्र खोज सकता हूं। मैंने अकादमिक काम किया, संगठनों को सलाह दी, किताबें लिखी, सेमिनार विकसित किए, परियोजनाएं शुरू की और कंपनियां स्थापित की। दूसरों को यह शायद लगातार प्रदर्शन की तरह लगे, मेरे लिए यह मेरे दिमाग की स्थायी सक्रियता से निपटने का तरीका है। मेरा ADHD लगातार नए विचार देता है, मेरी अति बुद्धिमत्ता लगातार योजनाएं, और मैं उन्हें अलग अलग दिशाओं में मोड़ता हूँ। यह मिश्रण मुझे जीवंत रखता है और एक तरह की शांति देता है, क्योंकि आंतरिक प्रवाह व्यर्थ नहीं जाता बल्कि आकार लेता है। दृष्टिकोण एब्सर्डिस्तान में संतुलन। मेरी न्यूरोडाइवर्सिटी की मिश्रण अत्यधिक प्रतिभा और ADHD एक साथ इंजन भी है और ब्रेक भी। यह मुझे सेकंड के अंश ने पैटर्न पहचानने, अप्रत्याशित समाधान खोजने और जटिल मॉडल सहजता से समझने देती है। यह मुझे संवेदनशील, आवेगशील और उत्तेजना की अधिकता के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। यह ऊंचाइयों और गिरावटों का कारण बनती है, असीम रचनात्मकता के दौर और पीड़ादायक बेचैनी के समय लाती है। यह मुझे लगातार संतुलन साधने के लिए मजबूर करती है, प्रामाणिकता और अनुकूलन के बीच, उत्तेजना और अधिकता के बीच, नेतृत्व और गहन कार्य के बीच। इस अध्याय की यात्रा मेरे आंतरिक एब्सर्डिस्तान को मानचित्रित करने का प्रयास थी, शिकायत करने के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए कि न्यूरोडाइवर्सिटी वाली प्रतिभाएं कितनी समृद्धिदायक और चुनौतीपूर्ण होती हैं। मैं ऐसी समाज की कामना करता हूं जो इस विविधता से डरे नहीं बल्कि उसे अवसर के रूप में देखे। एक ऐसी समाज जिसमें मेरे जैसे लोगों को खुद को छोटा छुपाना या अपनी क्षमताएं छुपानी न पड़े। क्योंकि जंगली एब्सर्डिस्तान केवल मेरी व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, यह उस दुनिया की छवि है जिसमें हम सभी रहते हैं, विरोधाभासी से भरी, संभावनाओं से भरी, अवसरों से भरी। अगर हम इससे डरने के बजाय इसे अपनाना और गढ़ना सीख लें, तो हमारे दिमागों की अराजक आतिशबाजी एक ऐसी रोशनी बन सकती है जो दूसरों को भी प्रेरित करे।